कायरव, धीरे पकड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। कायरव को झटका सा लगा। एकदम से वो अपने सेंसेस में लौटा और तुरंत ही इनाया से दूर हो गया। इनाया अपने पेट को धीरे धीरे अपनी हथेली से सहलाने लगी। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। पता नहीं कैसे, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। कायरव उसे दर्द में देखकर बुरी तरह घबरा गया। इनाया ने सर उठाया और मुस्कुराई। इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। वैसे भी सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे भी ख्याल नहीं रहा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ और इस वक्त ये सब हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जब तक ये हमारे पास नहीं आ जाता, हमें अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। बस 2.5-3 महीने की बात है, उसके बाद हम पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। फिर तुम मुझे दिल खोलकर प्यार कर सकते हो। मैं भी तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। इतनी सहजता से इनाया ने ये सब बातें कहीं, वो अब भी मुस्कुरा रही थी। कायरव तो बस उसे देखता ही रह गया। अब मुझे देखते ही रहोगे या कार स्टार्ट भी करोगे? भूल गए वहां सब हमारा वेट कर रहे होंगे। हाँ बस चल ही रहे हैं। कायरव ने सकपकाते हुए उस पर से नजरें हटाई और उसके एक्सप्रेशन देखकर इनाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। यू आर टू क्यूट। इनाया ने उसके गाल को पकड़कर खींचा। अगले ही पल मुंह बनाते हुए बोली, मेरे हैंडसम से पति का ये क्या हाल बनाया है तुमने? क्लीन शेव में कितने डैशिंग लगते थे, ये क्या जंगल उगा लिया है? कहीं तुम मेरी याद में देवदास बनने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? इनाया आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। तुम तो थी नहीं, तो हैंडसम किसके लिए दिखता? कायरव ने भौं उछाली। इनाया बड़ी सी मासूमियत से बोली, हाँ ये भी ठीक है, मैं तो थी नहीं। अगर तुम हैंडसम बनकर घूमते तो दूसरी लड़कियां तुम पर ट्राई मारने की कोशिश करती। अच्छा हुआ जो तुमने दाढ़ी बढ़ा ली, लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूं ना। अब तुम इसे हटाकर वापस पहले जैसे डैशिंग बन जाना, ओके? कायरव ने हामी भरी और इनाया खुश हो गई। कार स्टार्ट हुई और दोनों वहां से निकल गए। इनाया ने कायरव का हाथ थामे एक बार फिर उस हवेली में कदम रखा। अनीता जी और मानव उसे ड्राइंग रूम में बैठे नजर आए, साथ में नितिन भी था। जब वो आए थे तब इनाया का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी, खुश लग रही थी। बहुत वक्त बाद मानव और अनीता जी को उसके अंदर पुरानी इनाया की झलक नजर आई। दोनों के चेहरों पर सुकून उतर आया। आप दोनों भी फ्रेश हो जाइए, लंच टाइम होने वाला है, साथ में लंच करेंगे, कायरव ने दोनों को देखकर कहा। फिर आंखों से नितिन को कुछ इशारा किया और उसने सर हिला दिया। चलिए मैं आप दोनों को आपके रूम दिखा दूं। दोनों उसके साथ चले गए। कायरव विनाया के साथ सीढ़ियों के पास पहुंचा। पहली सीढ़ी पर कदम रखने ही वाला था कि उसके मन में कुछ आया और वो ठिठक कर रुका। नजरें इनाया की तरफ घूम गईं। तुम चढ़ लोगी सीढ़ियां? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम्हें? उसकी फिक्र और केयर देखकर इनाया मुस्कुरा उठी। चढ़ लूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। नहीं, अगर तुमसे नहीं चढ़ा जाएगा तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें उठाकर भी ऊपर लेकर जा सकता हूँ। सोच लो, मोटी हो गई हूँ मैं, वेट बहुत बढ़ गया है, उठा लोगी मुझे? कहीं गिरा दिया तो मुझे और तुम्हारे बच्चे दोनों को चोट लग जाएगी। इनाया मन ही मन शरारत से मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन मौजूद थे। उठा लूंगा, इतनी भी हेल्दी नहीं हुई हो। लो फिर उठाओ, लेकिन ध्यान से, गिराना मत। इनाया ने आंखों से वॉर्न किया और अपनी बाहों को फैला दिया। कायरव ने उसे अपनी बाहों में उठाया तो चौंक गया। तुम्हारा वेट तो मुझे पहले से भी कम लग रहा है। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, तुम्हें मुझे उठाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनाया मुस्कुराई, लेकिन कायरव के बाथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, इनाया को अपनी बाहों में उठाए सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने बेडरूम में आ गया। इनाया को आराम से बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। इस वक्त कायरव काफी सीरियस लग रहा था, माथे पर उभरी लकीरें उसकी चिंता जाहिर कर रही थीं। इनाया की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ती चली गई। कायरव क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं तुमसे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। कैसे सवाल? इनाया सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। रामलाल ने मुझे बताया कि तुम उसे मुंबई के आउटर साइड मिले, जहां कोई नहीं रहता। तुम उस सुनसान जंगली इलाके में कैसे पहुंची? वो भी मानव और काकी के साथ। यहां तक कैसे आई? डैड ने क्या किया तुम्हारे साथ? किन गुंडों की बात कर रही थी तुम? मुझे सब जानना है। मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ और कैसे तुम इस हालत में पहुंची, मुझे सब कुछ जानना है। इनाया के चेहरे को एक साया सा छूकर गुजरा। उसे वो सब याद आने लगा जो कायरव के जाने के बाद हुआ। अगर मैंने तुम्हें सब बता दिया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें भी तो हुई होगी, इसलिए मुझे जानना है। जो भी हुआ सब सच सच मुझे बताओ। लेकिन वो तो बीत गया ना, अब जानकर क्या करोगे? बीत गया फिर भी मुझे जानना है, वो भी सच सच। कायरव मानने नहीं वाला था, उसे जवाब चाहिए था। इनाया ने गहरी सांस छोड़ी और उस दिन पार्टी में जाने के बाद से रामलाल के मिलने तक जो भी हुआ वो सब उसे एक एक करके बताती चली गई। कायरव के चेहरे के भाव पल पल बदलते रहे, कभी दुख, कभी तकलीफ, कभी गुस्सा, कभी नफरत। अंत में उसका चेहरा सपाट था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन इनाया उसकी फीलिंग समझ रही थी। इनाया बेड से नीचे उतरी और कायरव के पास आकर उसे अपने गले से लगा लिया। इट्स ओके, वो सब पुरानी बातें हैं, अब तो मुझे उन्हें याद करने पर बुरा भी नहीं लगता। बस जब जब अतीत में झांकती हूँ तो दिल से बप्पा को थैंक यू कहती हूँ,
उस वक्त उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। मानव की हालत देखकर तो मैं बहुत डर गई थी। जब हमें किडनैप करके उस गोडाउन में बंद कर दिया था और मैंने उन गुंडों के इरादे जाने, तब भी मुझे बहुत डर लग गया था कि कहीं मैं उनके घटिया इरादों का शिकार न बन जाऊं। और उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा था जब मिस्टर रायचंद ने मेरे गले से मंगलसूत्र खींच कर निकाला था। और उससे थोड़ा कम बुरा मुझे तब लगा था जब वो गुंडे मेरी मानव के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, मुझे हवस भरी नजरों से घूर रहे थे। लेकिन अब मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो सब बहुत पीछे छूट गया है। मानव बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल सेफ हूँ। वो सब याद करते हुए नाया के एक्सप्रेशन बिगड़े जरूर, लेकिन अंत में वो मुस्कुराई। कायरव उसके पास था। इस खुशी के आगे अब उसे वो दर्द कम लगने लगा था, लेकिन कायरव चाहकर भी वो सब भूल नहीं पा रहा था। जितना बुरा उसे नाया के लिए लग रहा था, उतना ही गुस्सा उसे मिस्टर रायचंद पर आ रहा था। तुम रामलाल के साथ आई, उसके बाद से तुम उसी घर में रह रही थी? हाँ, रामलाल मुझे पहचान गया था। मुझे तो याद ही नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मुझे उस जख्मी हालत में भी पहचान लिया था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैंने उन्हें कहा कि अपने साथ हमें भी जयपुर ले जाएं और रहने का इंतजाम कर दें, किसी ऐसी जगह कि वो गुंडे हमें न ढूंढ सकें। रामलाल हमें यहाँ लेकर आए, अपना घर हमारे रहने के लिए ठीक करके वहाँ रहने का सारा अरेंजमेंट किया। रोज शाम को देखने भी आते थे कि किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं। हम मार्केट नहीं जा सकते थे तो सब लाकर भी वही देते थे। मानव को अपनी फैक्ट्री में काम दिलवाया, अपने आईडी से नंबर निकलवा कर दिया, फोन ला कर दिया। जब हॉस्पिटल जाना पड़ता तो अपनी गाड़ी भी देते थे। उस रात जब वो हमें मिले थे तब उन्होंने कहा था कि बहन जैसे रखेंगे, और सच में उन्होंने मेरा ख्याल ऐसे ही रखा जैसे कोई बड़ा भाई रखता है अपनी बहन का। तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? कायरव का ये सवाल सुनते ही नाया की नज़र सीधे उसके पेट पर गई। जहन में कुछ पुरानी बातें घूमने लगी। मुझे कब पता चला था? इनाया के फड़फड़ाते होंठों से धीमी सी आवाज आई, जैसे खुद को सवाल याद दिला रही हो।
हाँ, तुम्हें कब पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट हो? इनाया ने सर उठाया और उसकी नजरें कायरव की निगाहों से टकरा गईं। To be continued.